نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. آج ہم خوبصورت سورہ سورہ یاسین انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. اس خوبصورت سورت کی تفسیر بہت خوبصورت صورت ہے, اس لیے کہ اس کی جب آپ تلاوت بھی سنتے ہیں اتنی میلوڈیس ہے, کسی کو نہیں بھی سمجھ آتی تو تلاوت سننے میں ہی بہت مزہ آتا ہے, بہت ہی خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت پر عمل کا حق ہم سے ادا کروا دے. یاسین, یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ڈس جوائنٹڈ لیٹرس, جو الگ الگ حروف ہیں, یعنی ان کو یس نہیں ہم پڑھیں گے, یاس نہیں پڑھیں گے, یا اور سین الگ الگ ان کو پڑھیں گے. اب حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات جو اس کے بارے میں تفسیروں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حروف مقطعات, آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں, تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا یقینی علم کسی کو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ان کا علم اللہ کی طرف سے ہمیں نہیں ملا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بتائی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی کہ مطلب بالکل اوتھینٹک تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اچھا, نمبر ٹو, بعض نے کہا ہے کہ یہ سارے حروف صورتوں کے نام ہیں, جیسے نون, توحا, مگر پھر بھی باقی صورتوں کے نام, جیسے الف لام میم سے سورہ بقرہ شروع ہوتی تو الف لام میم نہیں ہے اس کا نام, تو یہ کوئی بہت زیادہ اوتھینٹک بات نہیں ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ حروف مقطعات کا ہر حرف جو ہے اللہ کے کسی نام کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جیسے الف لام میم ہے تو الف اللہ, اس طرح کچھ لام کا بھی گمانہ بنا دیا اس طرح. تو اسی طرح چوتھی بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ایک قسم لینے کا طریقہ ہے, یہ قسم کھانے کا یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام ہی حروف مقطعات کے بارے میں آئے. اب خاص یاسین, یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کیا معنی ہے؟ طبری کہتے ہیں تفسیر طبری میں کہ یاسین یہ اللہ تعالیٰ قسم لے رہا ہے, اور دوسری رائے ان کی یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور رائے ملتی ہے کہ یا اور سین کا معنی یا انسان, یا انسان, اور مطلب انسان سے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اسی طرح بعض اور بھی آراء اس کے بارے میں ملتی ہیں کہ اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ یا ناس ہو, جیسے اناس ہوتا ہے نا, یا ناس, تو ناس کے باقی حروف چھوڑ دیے گئے, صرف سین لے لیا گیا تو یا سین بن گیا. عربی شاعری میں ایسے کئی دفعہ ہوتا تھا کہ چند حروف لے لیے جاتے تھے اور صرف کوئی ایک حرف صرف چھوڑ دیا جاتا تھا. بعض کہتے ہیں یاسین سے مراد قرآن کریم ہے, اور بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص نے امام مالک سے پوچھا کہ کیا میں یاسین نام رکھ لوں, تو انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا تھا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے, اور جب ہم سورتوں کے اوپر نام رکھ لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی یاسین کے بارے میں کہے کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے, اور یہ ڈائریکٹ قرآن کے اوپر ایک یعنی حرف آ جائے گا, قرآن پہ ایک, یعنی مثلا کوئی کہ یاسین बहुत बुरा आदमी है या बड़ा लालची है या कुछ है, तो देखिए कुरान की एक सूरत का नाम भी वही है, या हो सकता है अल्लाह ताला का ये नाम हो। तो इसलिए उन्होंने इसको नापसंद फरमाया था कि अपने बच्चों के नाम इस तरह से रखे जाएं जो हरूफ मुकत्तात है। मगर ये बार कैफ इमाम मालिक की एक राय है जो मैंने आपको बता दी। और अब्बास कहते हैं अगर आपने नाम रखना भी है यासीन तो फिर भी या अलिफ सीन या नून इस तरह से करके रखें, डायरेक्ट ऐसे ना लिखें जैसे यहाँ पे लिखा गया। हर बार क्या, मैं ये नहीं कह रही किसी को कि अब आप अपने नामों को चेंज करें और ऐसे करें, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इमाम मालिक की इस बारे में ये राय थी। वल कुरान हकीम, कसम है कुरान हकीम की। आप अक्सर देखेंगे कि जिन सूरतों में शुरू में हरूफ मुकत्तात आए ज्यादातर इनके बाद कुरान करीम का जिक्र है। आप नोट करिएगा, जैसे मसलन सूरह बकरा में, सूरह आल इमरान में, सूरह आराफ में अलिफ लाम मीम सौद किताबुन उन्ज़िला इलैका, और इस सूरत में भी सौद वल कुरान ये भी है, काफ वल कुरान भी है, अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब सूरह सज्दा में भी है, हामीम तंजीलुल किताब भी है। हाँ, तीन सूरतों में आप देखेंगे हरूफ तहजी के बाद यानी हरूफ मुकत्तात जो है इनके बाद कुरान या किताब का जिक्र नहीं है, जैसे सूरह मरियम है, सूरह अनकबूत है, सूरह रूम है, उनमें नहीं है बस। लेकिन आप देखें मेजॉरिटी सूरतों के अंदर आप यही देखेंगे कि जब जब हरूफ मुकत्तात आते हैं जरूर आगे कुरान करीम की बात आती है, ठीक है। तो ये आप नोट करिएगा अब से जब आप कुरान पढ़ने लगे। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे कसम खाई गई है। कसम खाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह जो सच्चों का सच्चा है उसको कसम खा के कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो सोचें कि वो बात कितनी मजबूत है, वो बात कितनी सच्ची होगी। और यहाँ पे कसम भी खाई अल्लाह ताला ने कुरान हकीम की। कुरान का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, हकीम इसकी सिफत है कि ये कुरान कैसा है, हकीम कुरान है। नंबर वन, हकीम का माना क्या है? हकीम हिकमत से है, हिकमत इसमें विजडम है, बहुत ज्यादा विजडम है। अल्लाह ताला भी हकीम है, उसका कलाम भी जाहिर है हकीम ही होगा, वो खुद भी हिकमतों वाला है तो उसका कलाम हिकमतों वाला ही होगा ना, क्योंकि ये कलाम उसकी मखलूक तो है नहीं, उसका उसकी बात है। अच्छा, दूसरा माना हकीम का ये है कि वो, जैसे तबरी ने इसका माना किया है, वो चीज जो बिल्कुल वाज़े हो, जो प्रिसाइज हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो, एग्जैक्टली जैसे होनी चाहिए वैसे हो। और कुरान करीम के अंदर हर हर लफ्ज, हर हर बल्कि हर्फ आप देखें कि कोई ना फालतू है ना ऐसे ही कोई कहानियां सुना दी गई, बिल्कुल क्लियर है और टू द पॉइंट बात है, प्रिसाइज बात है, इधर उधर की नहीं मारी गई कि बस सफ़े भरने होते हैं, जैसे हमने टेस्ट वगैरह करते हैं तो सफ़े भरने के लिए ही बस लिखते ही चले जाते हैं, चाहे इधर की उधर हांक रहे हैं। और हकीम बमाना हाकिम भी है, यानी ये अथॉरिटेटिव है, यानी ये हाकिम है। हाकिम समझते हैं ना कौन होता है, हाकिम जो अपना हुक्म देता है। तो ये जिंदगी को चलाने के लिए अहकामात देता है इंसान को, क्या डिसाइड करता है इंसान के लिए कि कैसे उसको चलना है, ठीक है, उसको कमांड करता है इंसान को। और देखें किसी बेजान चीज को तो आप हकीम नहीं कह सकते ना, हम ये नहीं कह सकते कैलकुलेटर हकीम है, देखो मेरा कंप्यूटर कितना वाइज है, ऐसे नहीं आप कहते। आप किसी जानदार को ही हकीम कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कुरान एक ऐसी चीज नहीं है, ये वो चीज है जो जिंदगी का सोर्स है, जिंदगी देता है लोगों को। इसीलिए कुरान करीम में कुरान को अर-रूह भी कहा गया, रूह। देखिए रूह आती है ना बेजान जिस्म में तो वो उठ बैठ जाता है, जिंदा हो जाता है, कुरान भी जिंदगी में आता है ना तो इंसान के अंदर गोया रूह पड़ जाती है, उसकी मुर्दा जिंदगी जिंदा हो जाती है, मुर्दा जान उसकी जिंदा हो जाती है। तो बेजान में भी ये कुरान डालोगे, जो दिल मुर्दा हो चुके हैं वो भी इस कुरान के लिए की आने से जिंदा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये हिकमतों से पूर है, नफा ही नफा है इसका। ये एक्यूरेट बात है अल्लाह की तरफ से, ये ऐसी बात है जो फालतू बातें नहीं है, ये ऐसी बात है जो दिल को लगने वाली बात है। देखें, आपके खानदान में कोई बड़ा वाइज पर्सन हो, अगर किसी का आपको पता हो कि फलां बहुत समझदार है, बड़ी सही मशवरे बताता है, बड़ी सही बात करता है, तो आप अपनी हर बात के लिए उसकी तरफ जाके जरूर पूछेंगे कि भाई आप बताएं मुझे कि ये मैं काम करूं कि नहीं करूं, ऐसे करना चाहिए नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि मशवरा मांगो तो फिर उससे मांगो जो बड़ा समझदार है, बड़ा वाइज है, बड़ी इसके अंदर हिकमत है। तो क्या कभी हम वाकई सोचें तो कि कुरान को हम कहते हैं कुरान हकीम, बड़ी हिकमतों वाला है, कभी हमने इससे भी मशवरा लिया है कि हमने जिंदगी में चलना कैसे है, मैं ये करूं कि ना करूं? इसकी इसकी तो खासियत ही है, अल्लाह ताला ने इसकी यहाँ पे सिफत ही बयान फरमाई कि ये हिकमत से पूर है। और इंसान को किसी ना किसी की जरूरत होती है कि भाई अब कोई मामला करने लगते हैं ना हम, अब क्या करें, किससे पूछें, किसकी तरफ रुजू करें? तो क्या उस उन नामों में जो हमारे जहन में आते हैं, क्या कुरान भी होता है कभी उनके अंदर कि ये वो किताब है जो हिकमतों भरी है, मैं इसकी तरफ आऊं, मैं इससे रुजू करूं, मैं इससे पूछूं मैंने क्या करना है? अल्लाह अकबर, इसको तो हमने ऐसा समझा ही नहीं ना, इस तरह से लिया ही नहीं अपनी जिंदगी में। अगर वाकई ऐसे लिया होता तो हम इसको वैल्यू देते, हम कोई बहुत हिकमत वाला होता है ना तो हम उसकी तरफ दौड़ के जाते हैं, हर मसला उसे बयान करते हैं, हम इसको इस तरह से तो कभी नहीं सोचते। हाँ नहीं, ये वाकई कितनी हिकमत है इसके अंदर। अल्लाह ताला के पास जाके तो नहीं आप उसे को पूछ सकते, हमारे पास तो ये नहीं है कि हम अल्लाह ताला से जाके सिवाय दुआ के हम अल्लाह से कोई डायरेक्ट बात इस तरह से कह सकें और पूछ सकें। कुरान हमें जवाब देता है हमारी कन्फ्यूजन्स के, हमारी जिंदगी के मसाइल की, हमारे लिए तसल्लियों की, ये बात बताता। इसके बावजूद अल्लाह अकबर, हम इस कुरान को वो वैल्यू नहीं देते जैसी होनी चाहिए, जो इसका मकाम है वो हमारी जिंदगियों में वैसा नहीं है। आज गैर मुस्लिम इस कुरान पे रिसर्चेस कर रहे हैं, लेकिन हम देखें कहां हमारे एक मुसलमान से ही पूछ लिया जाए कि कुरान में क्या है, वो जो जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये हिकमतों से पुर है, इसकी हिकमत क्या है, इसमें कौन सी हिकमत की बातें हैं, हमें तो कुछ मालूम नहीं। इसके लिए कोई मेहनत करने को भी तैयार नहीं कि इसके मोती चुने। आप ये देख लें कि एक सूट बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, एक सूट बाजारों में घूमते हैं, उसकी मैचिंगें ढूंढते हैं, उसके साथ के दुपट्टे मैचिंग कराते हैं, रंगाई कराते हैं, दर्जियों के फेरे लगाते हैं, उसके ऊपर चीजें लगाने के लिए हम पूरा पूरा दिन बाजार में घूमते रहते हैं, उसके बाद जाके कहीं एक सूट तैयार होता है। लेकिन एक सूट के लिए इतनी मेहनत, लेकिन इस कुरान के लिए कितने लोग हैं जो कहें कि हम मेहनत करने को तैयार हैं, हम इसकी हिकमतों के मोती चुनने को तैयार हैं, हम इसकी तरफ आके इसके साथ वक्त लगाने को तैयार हैं। ये कितने लोग अपना आप देते हैं इस हकीम कुरान के लिए? हम तो ढूंढते हैं लोगों को, कोई मिल जाए ऐसा जो हमें सही बात बताए, सही मशवरा बताए, कभी उस बाबे के पास, कभी उसके पास, कभी फलां के पास, उसको कॉल करो, उसको हम ढूंढते हैं। हमारे घरों में एक हकीम कलाम, और हकीम का कलाम जो इटसेल्फ भी हकीम है, उसको वो पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, क्योंकि उसको तो हम कुछ समझते ही नहीं। अल्लाह ताला ने कसम खाई है, इतनी अजीम कसम है ये कुरान हकीम की कसम, बहुत अजीम कसम है। ये कसम किस चीज पे खाई है? जैसे हम कसम खाते हैं, हम कहते हैं कसम से, मैं कसम खा के कहती हूं कि फलां सच्चा है, कोई चीज होती है ना जिसपे हम कसम खाते हैं, यहां पे अल्लाह ताला ने कसम खाई, तो क्या है चीज जिसके ऊपर कसम खाई है? क्या बात अल्लाह ताला इंसानों को यकीन दिलाना चाहते हैं जिसके लिए अल्लाह ताला सच्चों के सच्चे ने कसम खा ली कि इन्नक लमिनल मुरसलीन, कि बेशक ए नबी आप रसूलों में से हैं। सुभान अल्लाह, आप रसूलों में से हैं, इसलिए कि मुशरिकीन कहते थे लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी के बिहाफ पे खुद जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब देना था? अल्लाह ताला ने जवाब दिया और गवाही दी, कसम खा के गवाही दी कि अल्लाह खुद इस बात का गवाह है कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। कभी हो सकता है इंसान, शैतान उसके साथ लगा हुआ, कभी हो सकता है इंसान के जहन में आए, पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वाकई वही आती थी कि नहीं, पता नहीं ये ऐसी बात है कि नहीं। तो उस वक्त ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने कसम खा के फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। मुरसल कौन होता है? इरसाल से है ना, जो भेजा गया हो, मुरसल, ठीक है। और रसूल उसी को कहते हैं कि जो किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से पैगाम लेकर आए, वो होता है। तो यहां पे हमें पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से खुद नहीं बातें बताते थे, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुंचाते थे। तो सबसे पहली बात, तो अगर दिल में किसी के कहीं कोई शक्को शुबा हो, वो निकल जाता है कि उस मालिक के कायनात ने कसम खा के फरमाया कि इन्नका, बेशक आपका वाहिद है। इसका मतलब इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि आप हैं रसूलों में से। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, सुभान अल्लाह, बात तीन ताकीदों के साथ की गई है। नंबर वन, कसम खाई गई। नंबर टू, इन्ना कह के, इन्ना कह के, इन्ना का मतलब क्या होता है? बेशक, यानी आप अपना शक दूर कर लें, कोई आपको इस बात में शक ना रहे। फिर ल, ल जो होता है वो भी हर्फ ताकीद है, जिसको कहते हैं लामे ताकीद, एम्फोसाइज करने के लिए। इसके लिए उर्दू या इंग्लिश में आप वेरीली कह लें, इंडीड कह लें, यकीनन कह लें, लेकिन मतलब अब अलबत्ता हमने लिख दिया तर्जुमे में, लेकिन उस तरह से यानी हक अदा नहीं हो पाता कि यानी कितनी सारी ताकीदें आ गई ना, कसम भी खा गई, बेशक भी, और ला भी आ गया। तो अल्लाह ताला इंसान को हर तरह से मुतमईन कर रहे हैं कि ये बात कभी जहन में भी ना आए, कभी ये शक भी ना गुजरे कि पता नहीं अल्लाह के रसूल भी थे, इनके पास वही आती भी थी कि नहीं। और यहाँ पे अल्लाह ताला ये भी फरमा सकते थे कि आप रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ला मीनल मुरसलीन, रसूलों में से हैं। ये क्यों कहा गया? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, आपको यानी स्ट्रोंग किया जा रहा है कि आप अकेले रसूल नहीं हैं, आप रसूलों के काफिले से ताल्लुक रखते हैं। इस जमीन पे आने वाले जो बेस्ट लोग थे, उस ग्रुप से आपका ताल्लुक है, उन एलीट क्लास से आपका ताल्लुक है। आप पहले रसूल नहीं है और आप अकेले रसूल नहीं है नबी, आप तो उस काफले के एक फर्द हैं। यानी वरना इन्ना कला रसूल भी था, देखिए ना, ये भी तो माना हो सकता, ये भी तो कहा जा सकता ना, बेशक आप रसूल हैं, लेकिन नहीं, लमिनल मुरसलीन, पहले भी रसूल आए आपसे पहले, वो भी सताए गए, उनको भी लोगों ने इनकार किया और उनके ऊपर भी ये सब कुछ गुजरा है। जब इंसान को पता चलता है ना कि मेरे हालात तो हैं ऐसे, लेकिन पता है फलां उसके साथ भी तो ऐसे हुआ था, फलां के साथ भी, तो फिर उसको जरा तसल्ली हो जाती कि मैं अकेली नहीं हूं, और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये मसले हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर ये कुरैश आपको नहीं मानते, तो ए नबी कुरान कयामत तक आपकी रिसालत की गवाही देता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, ये गवाही है, अल्लाह की तरफ से गवाही है। अब कुरैश भी जब कुरान की ये बात सुनते होंगे तो उनको भी समझ तो आ रही थी कि इनको तो बिल्कुल निकाल के एक और ही ग्रुप में डाल दिया गया। तो इन्नक लमिनल मुरसलीन, बात अब सारी जब ये सारी आगे बातें करने से पहले ये बात बता दी गई कि ये बात पहले जहन में बिठा लो, फिर ही तो कोई बात आगे समझ आएगी ना। अगर रसूल के रिसालत में ही शक हो गया तो उनके मुंह से कही गई कोई भी बात फिर असर नहीं करेगी। और ये कैसे हैं, आला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे हैं। कौन? दो राय हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम पे हैं, दूसरी ये जो काफिला रसूलों का है ये सारे ही सिरात मुस्तकीम पे हैं। ठीक है, यानी सब सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सीधे रास्ते पर थे, वो भी सीधे रास्ते पर थे जो अंबिया का काफिला था। अब बताएं जो इस काफिले को फॉलो करेगा वो किस रास्ते पे होगा? वो भी सीधे रास्ते पर ही होगा। अनअमत अलैहिम की जब बात आती है सूरह फातिहा में तो वो भी काफिला है जिसमें आगे आगे अंबिया हैं, अंबिया हैं, पीछे पीछे फॉलोअर्स हैं। ये कितना खूबसूरत ग्रुप है, ये कितना प्यारा काफिला है जिसमें कैसे कैसे बड़े बड़े लोग हैं। तो सिराते मुस्तकीम पे उनका भी कहा गया, वो भी सिराते मुस्तकीम पे, और हमें भी कहा गया तुम मांगो तो सिराते मुस्तकीम मांगो, क्योंकि ये इनका रास्ता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था सिराते मुस्तकीम, और पिछले रसूलों का रास्ता है वो भी सिराते मुस्तकीम पे ही चलने वाले थे। अच्छा हम कहते हैं नहीं मुश्किल तो बड़ा है, ये तो अमल करना तो बड़ा ही मुश्किल है, अगर सिराते मुस्तकीम पर ना चले तो इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता है जो सीधा रास्ता है, बहुत सारे रास्ते नहीं है सिराते मुस्तकीम। याद रखें एक और भी लफ्ज है रास्ते के लिए और वो है सबील, वो क्यों नहीं आया? सबील भी तो रास्ता है, सबील लेकिन वो रास्ता है, सबील वो है जिस वो लफ्ज है जिसका प्लूरल भी आप कर सकते हैं, सुबुल, उसकी जमा भी है सुबुल। सिरात वो लफ्ज है जिसकी कोई जमा नहीं है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने वो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। और कुला कुशादा रास्ता वो होता है सिरात, वास्ट हो जो बिल्कुल खुला हो, ये रास्ता खुला है, पिछले लोग भी इस पे चले हैं, हम नहीं चलेंगे क्या? देखें और ये कितनी प्यारी बात है के सिराते मुस्तकीम पे होने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिराते मुस्तकीम पे होने की गवाही अल्लाह ताला दे रहा है। वो कहते थे ना नहीं ये बहक गए हैं, ये ऐसे हो गए हैं, ये हो गया इनको, मजनून हो गए हैं। भाई सारी दुनिया आपको कह दे कि आप सही नहीं हैं तो सारी दुनिया एक तरफ, और रब कह दे कि आप सिराते मुस्तकीम पे हैं, रब की बात सारों की बात पे भारी है। ठीक है, अल्लाहु अकबर, मसलन सारी दुनिया आपको कहे आप गलत हैं, आपने ये सही नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपकी टीचर आपको अगर कह देती है ना नहीं आप सही हैं तो शागिर्द के लिए इतनी बात बड़ी काफी होती है, नहीं जी मेरी टीचर ने कहा। दूसरे लोग आपकी कितनी तारीफ करें, जब कोई आपसे बेहतर हो जो उस फील्ड में वो आपकी तारीफ करे तो फिर आपको ताकि नहीं अब वाकई कोई बात है। ठीक है, यहां पे आप देखें अल्लाह ताला की तरफ से ये कह दिया गया कि आप सिराते मुस्तकीम पे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए या अल्लाह ये जुमला कभी हम भी सुने कि अल्लाह ताला हमें ये फरमा दे कि तुम सिराते मुस्तकीम पे हो। अल्लाह अकबर, ये तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी इस रास्ते पर चला दे, और कोई दिन ये भी है कि अल्लाह तू हमारी गवाही देना कि हम सिराते मुस्तकीम पे चले। अल्लाहु अकबर। तो हमेशा एक इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए, ये तलब तड़प होनी चाहिए कि मुझे सिराते मुस्तकीम पे अल्लाह ताला चला दे। और जो लोग नए हैं कुरान की तरफ आने वाले उनको भी दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह, क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, यहाँ भी क्लासें वहां भी क्लासें, भाई ठीक कौन है, कोई सीधा भी बताता है कि कोई पता नहीं क्या किस तरफ ना हमें ले जाए, बहुत सारे इस ख्यालात जहन में आते हैं ना, तो उस वक्त इंसान को यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चला देना बस, अल्लाह हमारे नल हक का हक का वर्जुक न तिबा हो, अल्लाह हक को हक करके दिखाना और इसकी तिबा की तौफीक देना, क्योंकि हमें नहीं पता गुमराही के बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन सिराते मुस्तकीम एक है। और इतनी प्यारी बात है कि आला सिराते मुस्तकीम, आला आला का हम तर्जुमा कैसे करते हैं, अपॉन है ना, अपॉन यानी ऊपर जिसको हम कहते हैं। तो ये समझ लें कि सिराते मुस्तकीम क्या है, ये कि आला का लफ्ज एक आना भी तो एक बात है ना, कोई और भी लफ्ज आ सकता था, इला भी आ सकता था, तरफ से तराते मुस्तकीम की तरफ है, नहीं आला अपॉन, कि जैसे समझिए कि जैसे एक रास्ता है जिसके ऊपर आप चढ़ गए, जेहन में ऐसे लाएं कि एक गाड़ी है एक सवारी है जिसके ऊपर आप सवार हो गए, उसके बाद वो आपको लेके चल पड़ती है, अब आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं होती है सही चल रही है कि नहीं क्या हो रहा है, नहीं फिर आप उस पे वो जो सही मसलन कोई ट्रेन है कोई जहाज है बस आप उसके ऊपर सवार हो गए ना, उसके बाद बेफिक्री हो जाती है। सिराते मुस्तकीम एक ऐसा रास्ता है कि इंसान इसके ऊपर रहे तो वो बेफिक्र होगा, वो सीधा अल्लाह तक ही पहुंचाता है। बस इंसान की मेहनत क्या होनी चाहिए कि इस रास्ते पर चल पड़े। मुस्तकीम क्या है, इमाम राजी फरमाते हैं मुस्तकीम है सबसे यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे यानी जल्दी पहुंचा देने वाला क्विक जो रास्ता है ना अल्लाह तक जो पहुंचाता है जो ले जाता है अल्लाह ताला तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो मुस्तकीम है, सुभान अल्लाह, शॉर्टेस्ट पाथ सबसे तेज पहुंचाने वाला रास्ता। देखिए ना एक जगह आपने पहुंचना हो, एक बड़ा लंबा भी रास्ता हो सकता है उसमें बड़े घेर हैं, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ भी हो सकता है, और मुस्तकीम सीधा भी, ये भी मतलब है इसका अपराइट मुस्तकीम यानी ये बिल्कुल सीधा है, इसके अंदर कोई टेढ़पन नहीं है। अल्लाह हू अकबर, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस रास्ते पर हमें चला दे, अल्लाह दौड़ा दे इस रास्ते पर, और अल्लाह गुमराही के रास्तों से महफूज रखना। अब ये कौन सी, इस रास्ते की एड्रेस क्या है, कहाँ पे मिलता है ये रास्ता, भाई जाना तो हमने है इस रास्ते पे, किधर से मिलेगा, किधर पूछेंगे हम क्या कहाँ है ये रास्ता, बताएं इसका एड्रेस क्या है। तो सिराते मुस्तकीम पता है किसको कहते हैं, कुरान के रास्ते को, इस्लाम को, सुन्नते नबी को, कुरान हिदायत है रहनुमाई है, और सुन्नत के मुताबिक फिर चल पड़ना इस उसके ऊपर जो कुरान की रहनुमाई है उसके मुताबिक सुन्नत पे अमल करना, ये है सिराते मुस्तकीम। यानी अगर कोई इंसान कुरान की तालीमात पर अमल करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएगा, वो समझ लें कि सिराते मुस्तकीम पे जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है। तो अगर अगर हमने देखना है ना कि सिराते मुस्तकीम पे कैसे दें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे ही बात करते रहना जी एक सिराते मुस्तकीम एक रास्ता, वो किधर से जाके ढूंढे उस रास्ते को, तो अब समझ आई कि अच्छा कुरान की तालीमात पे जो अमल करेगा सुन्नत के मुताबिक जो चलेगा वो है जो सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला है। और यही कोशिश होनी चाहिए कि हम उस रास्ते को तलाश करें और उसके ऊपर अपनी जिंदगी को लगा दें, उसके ऊपर इस रास्ते पे सवार हो जाएं, इस पे चल पड़ें। क्या अब अगली आयत, आयत नंबर 2 की तरफ हमारी दोबारा उसकी तरफ इशारा है, तंजील अल अजीज रहीम, ये नाजिल करदा है ये किताब किसकी तरफ से, जो अजीज भी है और रहीम भी है। यहाँ पे ये भी आ सकता था कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफात यहां पे लाया। अल्लाह ताला अपनी दो सिफात अजीज और रहीम। पहले तो तंजील का लफ्ज देख लेते हैं, नज़ला युनज़िलु तंजील क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके बड़े इत्मीनान के साथ नाजिल करना। देखिए नजूल का जो लफ्ज है ना, वो होता ही है ऊपर से नीचे की तरफ आना, ऐसे ही है ना। नाजिल हम इसको नहीं कहते, नीचे से कोई ऊपर जा रहा हो तो उसको नहीं नाजिल कहते, ऊपर से नीचे आना। और ये है ऊपर से नीचे आया किसकी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, अजीज और रहीम अल्लाह ताला है। इसका मतलब अल्लाह ऊपर है, ये याद रखे, अल्लाह ताला ऊपर है, ऊपर से ये नीचे की तरफ आया। और हदीस से भी हमें मिलता है, हदीस शरीफ में है कि कुरान अल्लाह की रस्सी है। आप अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना चाहते हाँ, कुरान फरमाया अल्लाह की रस्सी है जो आसमान से जमीन की तरफ लटक रही है। अल्लाह ताला ने लटकाई भी है, जो इसको मजबूती से थाम लेगा तो वो हिदायत पा लेगा, उसका अल्लाह से कनेक्शन जुड़ जाएगा ना। देखिए एक किसी के साथ कनेक्शन ये भी तो होता है ना, आपने एक दुपट्टा एक तरफ से पकड़ा, दूसरे दूसरी तरफ से पकड़ा, आप उसके साथ ताल्लुक आपका जुड़ गया। कुरान के जरिए आप अपना ताल्लुक किससे जोड़ते हैं, अल्लाह ताला से। तो इधर उधर मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से कैसे ताल्लुक जोड़ूं। जिनके दिल में ख्वाहिश है ना अल्लाह ताला से ताल्लुक बढ़ाने की, जोड़ने की, कहाँ जाएं वो, कुरान की तरफ आ जाएं। ये इसको इमेजिन करें तो ये वो रस्सी है जिसको जितना मजबूत थाम लोगे उतना ही अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा आपका। ये अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है। हम कनेक्शन लगाते हैं ना, हम ये फोन के ऊपर नंबर डायल करते हैं तो हमारा कनेक्शन मिल जाता है। अल्लाह ताला के साथ ऐसे बातचीत करनी है, कनेक्शन जोड़ना है तो कुरान की तरफ आ जाए। इंजाल भी एक लफ्ज होता है, वो भी नाजिल करने के लिए ही आता है, लेकिन इंजाल में है एक दफा में ही नाजिल कर देना, एक दफा में ही उतार देना। मगर नज़ला, ये जो तंजील का लफ्ज है, ये नज़ला से है जिसमें थोड़ा थोड़ा उतारना। याद रखिए ये कुरान ही है जो दुनिया में थोड़ा थोड़ा करके उतरा। बाकी जो किताबें हैं, मसलन तौरात है, वो मूसा अलैहिस्सलाम को तूर से मिल गई थी, इंजील है, सुहफ इब्राहिम है, वो भी अल्लाह ताला ने एक ही दफा में उतार दी थी, वो थोड़े थोड़े करके नहीं उतरे। लेकिन कुरान है सिर्फ जो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया। क्यों थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया, देखिए इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन एक हिकमत के पर आज सिर्फ आपकी तवज्जो कराऊंगी कि इससे पता चलता है कुरान करीम के लिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि कुरान को हम सही से जज़ब करें अपने अंदर, इसके ऊपर तदब्बुर करें, इसके लिए अमल का वक्त दिया जाए, तभी तो थोड़ा थोड़ा। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा लेसन क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए ताकि आप पूरे हफ्ते के अंदर इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, इसको सीखें और समझें, इसको डाइजेस्ट कर लें, अब आप की जिंदगी के अंदर शामिल हो जाए, इसलिए थोड़ा टाइम दिया जाता है। अब कुरान करीम एक ही दफा में किसी पहाड़ पे भी रख दिया जाता था, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दूसरी किताबें आई इसी तरह एक दफा ही लाके दे देते, लेकिन उससे क्या था कि वो अमल करना मुश्किल हो जाता। तो ये एक हिकमत है इसकी। बाज़ दफ़ा देखिए हम भी चाहते हैं हमें बस एक साल का कोर्स बता दें, वो वहाँ पे तो दो साल का कोर्स हो रहा है, यहाँ पे इतना अरसा लग रहा है, इतने साल लग रहे हैं, हाय ख़त्म कब होगा कुरान, ख़त्म कब होगा। ओ ये ख़त्म करने की चीज़ नहीं कि आप बस ख़त्म करने की फ़िक्र में हर वक्त रहें, ख़त्म कब होना है, ख़त्म करें हम सर्टिफिकेट ले लें, इसका मकसद तो ख़त्म करना नहीं है। इसका मकसद तो ये है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा करके फिर अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक मोल्ड करते जाने। कोई चीज को मोल्ड करना हो आपने, यानी मोल्ड करना क्या होता है, यानी किसी चीज को उसके मुताबिक शेप अप करना हो, किसी चीज को उस तरह ढालना हो, तो उसके अंदर वक्त लगता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है। ये कुरान जब आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं ना, जैसे उतरा अभी तो थोड़ा थोड़ा ही था ना, ऐसे एक दिन तो नहीं उतर गया था, 23 साल लगे इसको उतरने में, 23 साल। हम कहते हैं बस आज के आज ही हमें जैसे ना सारा कुरान घोल के पिला दो, ताकि ज्यादा हमें बहुत मेहनत ना करनी पड़े, इतने दिन नहीं हम लगा सकते, हमारे पास टाइम कहाँ है। नहीं, इसीलिए फिर हमारे यह हाल होते हैं ना कि बस रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं और आगे से आगे चलते जा रहे हैं, आगे आगे भागते जा रहे हैं, पीछे का पता ही नहीं। तो ये कुरान सहाबा ने भी इस तरह से लिया कि 8 साल में हजरत उमर ने सूरह बकरा पे लगाए थे, क्योंकि वो आयात को इतना ऐसे नहीं लेते थे कि बस ये आयत है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि किस तरह से वो सहाबा लेते थे आयात को, फौरन ऐसे लेते थे कि अमल करने के लिए। इसलिए थोड़े थोड़े में बड़ी हिकमत है, ये उतरा भी थोड़ा थोड़ा, हमें भी टाइम ले लेके इसको लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं इसमें लगानी चाहिए कि बस जल्दी करें जल्दी करें। बहुत सारे लोग अभी शुरू होता नहीं है कोर्स, बात करते पहले हमें ये बता दें कितने साल लगेंगे, कितने अरसे में खत्म होगा, खत्म करने की इतनी क्या जल्दी है। अभी ऐसे उनको लगता है कि जैसे खत्म कर देंगे ना तो फिर हमारे सर से एक जिम्मेदारी उतर जाएगी भाई हमने खत्म कर दिया। नहीं, ये तो तज़कीर है, ये तो जिक्र है, आगे आ रही है ये बात, इसकी तो हमें हमेशा जरूरत रहेगी। ये कोई कोर्स दुनिया के कोर्सों की तरह नहीं है जिनको एक दफा खत्म कर लिया तो उसके बाद बस किताबें बंद करके रख दी, अब क्या जरूरत है, अब बस सारी जिंदगी के लिए एक डिग्री मिल गई है, आप एफए पास हैं, बीए पास हैं, एमए हो गया आपका, उसके बाद चाहे आपको उस सब्जेक्ट का कुछ भी ना आता कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुरान वैसे नहीं है, ये नाजिल करता है। अब इसकी तरफ आए पहले, अल अजीज और अर रहीम की तरफ से। अजीज अल्लाह ताला का जो नाम है इसका मतलब है गालिब, गालिब जिसका गलबा और डोमिनेट करता हो जो, ठीक है, एक मतलब ये हो गया, यानी इसको उसको यानी कभी कोई शिकस्त ना दे सके, कोई उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकता, वो सब पे गालिब है, ठीक है। नंबर टू इसका माने माना है अज्जा से, कवी, बहुत कुव्वत वाला है, जिसको हम कहते हैं ना जबरदस्त, तो इसलिए माना लिखा होता है। नंबर थ्री जिसके पास इज्जत है, अजीज इज्जत से, ये तीनों माने हैं इस नाम के, नहीं बहुत ज्यादा वो पावरफुल है, बहुत ज्यादा इज्जत वाला है, बहुत गालिब है। अच्छा अब आप मुझे बताएं, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो क्या होता है, जिसके पास पावर आ जाती है, आप देखते ही हैं, खैर ये तो इतना मुश्किल सवाल ही नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, जिनके पास पावर होती है, कुर्सी आ जाती है, तो वो फिर उसके बाद उनका हाल क्या होता है, उनके हालात क्या बन जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, जुल्म करने लगते हैं, उनके अंदर रहम नहीं रहता, दिल सख्त हो जाते हैं उनके, कुर्सी की वो होता है ना एक नशा होता है, राइट, पावर का एक नशा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने इस नाम अल अजीज के साथ जो अपनी सिफत बयान फरमाई यहाँ पे, वो है अर रहीम, इतना पावरफुल होने के बावजूद वो रहम फरमाने वाला है। आप इंसानों में तो मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसा होगा जिसके पास बहुत पावर हो और उसके बाद रहम, कम ही कोई होता जिसके अंदर रहम हो, अक्सरियत के अंदर से रहम निकल जाता है, वो पावर, जाहिर है जो मैं आपको कह रही हूँ वो पावर का नशा होता है। तो ये एक इंसान की कमजोरी समझ लें कि जहां ताकत का नशा चढ़ता है उसको, वहां उसके दिल से रहम निकल जाता है, मखलूक, दूसरे इंसानों का, मखलूक का, और का, वो अपने ही किसी और ही वर्ल्ड में, जैसे आप देख लें अमीर अमीर लोग होते हैं, कहां उनके अंदर इतना मालो दौलत होने के बावजूद उनके अंदर एहसास खत्म हो जाता है, उसके अंदर से रहम खत्म हो जाता है, किसी के लिए मर्सी नहीं रहती उनके अंदर। लेकिन अल्लाह ताला वो अल अजीज है जो सारी कुव्वतों का मालिक है, सुभान अल्लाह, फिर उसकी देखें कितनी बड़ी बात है कि वो अर रहीम है। अर रहीम कौन, जिसमें रहमत हो, वो अपनी मखलूक पे रहम करता जा, मुसलसल रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली जो रहम करता है। अरे किसी पावरफुल आदमी को आप देखें तो अगर कहीं उसको दिल में कहीं रहम आ ही जाएगा तो एक आध दफा आएगा, उसके बाद फिर उसकी ताकत उसको कहती मैं क्यों रहम करूँ, क्योंकि इंसान सोचता है रहम करूंगा तो पता नहीं मैं कमजोर समझा जाऊंगा। और अक्सर रहम कौन करता है, जो खुद कमजोर होता है, तो फिर अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती, वो दूसरों के साथ भी रहम का मामला कर लेता है। लेकिन اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دو صفات ایک ساتھ ہیں کہ وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ایک طرف اس کا غلبہ ہے اور اس کی طاقت ہے, دوسری طرف اس کی رحمت اور اس کی شفقت ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہ پھر ویسے تو عزیز الحکیم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ یہ صفت آئی ہے, العزیز الحکیم, یعنی یہ دو اسماء حسنہ جو ہے نا ساتھ ساتھ اکثر آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اس کی ہر فیصلے میں حکمت ہے, لیکن یہاں پہ عزیز کے ساتھ رحیم آئی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تمہارے پاس آیا ہے, یہ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے جو بہت پاورفل ہے. اس کو ایسے نہ سمجھنا, اس کو لیجرلی نہ لینا, اس کو معمولی نہ سمجھنا. جو اس کو نہیں مانے گا تو یاد رکھے کہ یہ کلام کس کا ہے, اس غالب کا ہے جس جو ڈومینیٹ کرتا ہے. اور جو اس کو مان لے گا, اس کے مطابق چلنے لگے گا, اس کی خطاؤں کو وہ بخش دے گا کیونکہ وہ رحیم ہے, اس کے اوپر رحم فرمائے گا. تو دونوں باتیں آ گئیں, اللہ نے اپنی پاور بھی بتا دی کہ جو نہ مانیں گے تو یاد رکھیں کہ پھر ان کا پالا کس سے پڑ رہا ہے, اس العزیز سے. اور جو مان لیں گے تو رحمت اس میں, وہ اس کا نام ہی جس کا نام اور رحیم ہو تو سوچیں کہ اس کے اندر کتنی رحمت ہوگی, دوام ہے اس کی رحمت میں, یعنی کنٹینیوٹی ہے. تو یہ اس کی شان ہے کہ ایک ساتھ اس کے اندر یہ دونوں صفات ہیں. ایک صفت العزیز کی اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے, اس کا جلال ہے اس کے اندر. تو ڈرنا چاہیے وہ لوگ جو کہ سوچتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ تو بس رحیم ہے رحیم ہے, صرف یہ بات سوچتے ہیں, تو وہ دوسری صفت کو بھی دیکھ لیں کہ وہ العزیز بھی ہے. سمجھ آئی نا, کوئی کسی کی پاور اس کے آگے نہیں چل سکتی. تو صرف یہ نہیں سوچیں کہ رحیم رحیم تو اب ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا, نہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کس لیے آیا یہ قرآن کریم, کیا مقصد ہے اس کتاب کا, کیوں بھیجی گئی یہ کتاب, کیا ضرورت تھی اس کتاب کی. اب ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں, ہمیں جو مقصد سمجھ آتا ہے جو ہم نے آج بنایا ہوا ہے خود سے اس کتاب کا مقصد, وہ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بتایا. جس نے بھیجا ہے اسی کو بہتر پتا نا کہ اس کا مقصد کیوں اس نے بھیجی ہے, کیا مقصد ہے اس کا, وہی صحیح بتا سکتا ہے. مگر کچھ مقصد ہم نے خود بھی تو ڈیفائن کیے ہیں نا, تو لیٹ سی کہ ہم نے جو سمجھا ہے اس کا مقصد کیا وہی مقصد ہے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا اس کا مقصد سمجھا. آئیں جی ہمارے گھر آ کے قرآن خوانی کر دیں, نیا گھر لیا ہم نے ذرا برکت ہو جائے, یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھائی اب بیٹی جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے اس کو رخصت کیا جائے, یا پھر ہم دیوار پہ لٹکا لیں قرآن, یا پھر چلو بہت نہیں ہے تو اور نہیں ہے کچھ تو تھوڑا یعنی گھول کے پی لیں, گلے میں لٹکا لیں. تو ہم نے بڑا مقصد پورا کر دیا اس قرآن کا, بہت ہی ہم نے کر دیا, بہت ہی کر دیا. تو چلو ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہوتے ہیں ہم, یعنی اس کو قرات کرتے ہیں, تلاوت تو نہیں کرتے, ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو بے سوچے سمجھے. تو یہ ہمارے قرآن کے ساتھ رویے ہیں, یہ ہم قرآن کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ مقصد ہے. اور ایک اور مقصد جو بہت عام ہے, جو سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کب قرآن کھلتا ہے کہیں, بتائیے, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر ہم قرآن کھول لیتے ہیں. یہ ہیں ماشاءاللہ جو ہم نے مقاصد سمجھے ہوئے ہیں اس قرآن کے. آئیے اب اس قرآن کی آیت 6 کی طرف, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بیان فرمایا, کس لیے. لی کا مطلب تاکہ, کیوں نازل کیا ہے, نازل کرتا ہے عزیز کی طرف سے, رحیم کی طرف سے, کیوں تاکہ. سمجھا گئی بات, यानी मकसद बताएगा कि क्यों अल्लाह ताला ने नाजिल किया ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, और अल्लाह ताला की तरफ से आया क्यों है ये। ली तुम जीरा कौमन, ताकि आप खबरदार करें किसको, उस कौम को, मां उन जीरा आबाओ हूं, नहीं खबरदार किए गए उनके आबाओ अजदाद। फहुम गाफिलून, बस वो गाफिल हैं। फा का मानना यहाँ पे क्या है, एज अ रिजल्ट, यानी इसका नतीजा ये है कि वो गाफिल पड़े में, गफलतों में। कुरान क्या मकसद बता रहा है कि ये किताब क्यों आई, ताकि इंजार किया जाए, वॉन कर दिया जाए, खबरदार कर दिया जाए, और खबरदार किसको किया जाए, उस कौम को, क्योंकि चूंकि कुरान करीम के अव्वलीन मुखातिब कौन थे, अव्वलीन मुखातिब थे कुरैश मक्का, तो इसलिए फरमाया गया कि ऐसी कौम को, क्योंकि शुरू में जिस वक्त मिड टाइम था, मैंने कहा है ना आपको कि मक्की सूरत है ये, मक्का के मिड के टाइम में उतरी, उस वक्त प्राइवेट दावा के बाद पब्लिक दावा शुरू हो चुका था कि आप अपने यानी जो अहले मक्का है इनको डराएं, इनको खबरदार करें। तो उनको, जिनको, जिनके बाप दादा को नहीं खबरदार किया गया, क्यों नहीं खबरदार किया गया था, इसलिए क्योंकि इंतजार करना रसूलों का काम होता है, रसूल इंतजार करते हैं, वो वॉन करते हैं, वो अंजाम को बयान करते हैं कि अगर तुमने इसी तरह जिंदगी गुजारी तो ये अंजाम बद होगा। वो लोगों को जिसको हम कहते हैं ना वेकअप कॉल देते हैं, यानी उनको जगाते हैं। तो अब चूंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी नहीं आया, इस इलाके में कम से कम नहीं आया, ठीक है वो दूसरे इलाकों में तो आते रहे, लेकिन इस इलाके में कोई नबी नहीं आया। तो ये माँ के ना दो माने हैं, अब मैं आपको एक माना भी बता रही हूँ कि नहीं आया कोई खबरदार करने वाला, इनके अबाउ अजदाद को भी नहीं किसी ने खबरदार किया, अब इनको भी नहीं कुछ पता, तो ताकि आप इस कौम को खबरदार करें क्योंकि ये तो गफलत में पड़े हुए, ये मकसद है इस किताब को उतारने का, ताकि इसके जरिए, इसके थ्रू इंतजार किया जाए। समझ आ गई बात, अब ये तो हमारी डिक्शनरी में कहीं पे भी नहीं है, कोई बताया जाए कि भाई हाँ ये जो तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो ये चंद दिन की जिंदगी है, इसके बाद हिसाब किताब है, गफलत से उठो, गफलत से जागो। ये फरमाया गया यहाँ पे फहुम गाफिलून, पस वो गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, गफलतें छा गई हैं। गफलत क्या चीज होती है कि इंसान बिल्कुल यानी लॉस्ट हो जाए, उसको पता ही ना हो कि करना क्या है, किधर को जाना है। हम कहते हैं ना ये बिल्कुल गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उर्दू में भी बोलते हैं ये बात। तो वो गफलत क्या चीज होती है कि इंसान किसी चीज को इल्म के बावजूद अवॉइड करे। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला किसी कौम के पास उसी वक्त रसूल भेजता है जब वो कौम गाफिल हो जाती है, कि किसी चीज की तरफ तवज्जो ही ना करना। अब किसको नहीं पता कि मरना है, किसको नहीं पता। अब मुसलमानों में से बताएं, काफरों को तो छोड़ें, उनको तो खैर बिल्कुल ही वो गाफिल हैं, उनका तो ईमान ही नहीं है। किसको नहीं पता है कि आखरत की जिंदगी है, किसको नहीं पता अल्लाह के सामने खड़े होना है। लेकिन आपने देखा है ना कि गफलत कितनी ज्यादा है, गफलत ऐसे छा चुकी है जहनों पर कि पता ही नहीं है किधर से आए, किधर जाना है, आगे भी कोई जिंदगी है कि नहीं है, कुछ होश नहीं है, मदहोश है। ऐसे मदहोश लोगों को वेकअप करना है, जगाना है, ये है नबी आपका काम, इस किताब के जरिए आप जगाइए। इसका मतलब ये मकसद है, कुरान है, लोगों को बताएं कि क्या अंजाम आगे आने वाला है, लोगों को बताएं जागो, तुम जो जिंदगी गुजार रहे हो ना ये सही नहीं है, जो लॉस्ट है उनको सीधे रास्ते की तरफ लाने की दावत दें, ये है मकसद। हमारे मकासिद में से कहीं हमें ये मकसद नजर आता है, कभी हमने कुरान को इस नजर से भी पढ़ा है चलो जो नहीं पढ़ते वो तो नहीं पढ़ते, लेकिन इसका मकसद तो ये था। कभी आपने इस मकसद से कहीं कुरान को सीखा हो, कहीं समझा हो, कहीं खुद पढ़ा हो, ये बताइए। कुरान से मोहब्बत के दावे तो बहुत है, हमें कुरान से बड़ी मोहब्बत है, कुरान बड़ी कीमती चीज है, कुरान वैसे है ये है। अल्लाह अकबर, लेकिन आगे देखें उसके बाद कुरान के लिए किसके पास वक्त है, और इस तरह से जिस मकसद के लिए उतरा है उस मकसद को पूरा करने के लिए कौन लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं। नहीं जी, मैंने अपनी जिंदगी को सुधारना है, मैंने गफलत से निकलना है, ये मैं सही नहीं चल रही, ये कुरान का तो मकसद है, ये जगाएगा मुझे। सो रहे हैं, सो रहे हैं हम, और इतनी गहरी नींद सो रहे हैं कि जागने का नाम ही नहीं ले रहे। आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब के जरिए इंतजार किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो आप बताएं इंतजार की जिम्मेदारी किसकी है कि इस किताब के जरिए इंतजार करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। अब अल्लाह ताला मुझे माफ करे, इतनी तकलीफ होती है इस बात पे, इतनी दुख होता है कि जिन्होंने दूसरों को जगाना था वो तो खुद ही सो गए। ये बात मुझे बहुत दुखी करती। देखो वो लोग, अब मसला ना कि किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज के लिए जाए, वो डॉक्टर ही सो जाए जिसने ऑपरेशन करना है, जिसने उसको उसकी जान बचाने के लिए जो चीजें करनी है वो ही सो जाए, तो फिर इस बेचारे मरीज का क्या बने। इंसानियत इस वक्त तकलीफ के अंदर है, उनको कहीं सुकून नहीं है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो लॉस्ट हो चुके हैं। जिन्होंने रास्ता बताना था वो तो खुद लॉस्ट हो गए, वो तो खुद मीठी नींद सोए पड़े हैं, और उनको जगाना भी चाहो ना तो जागने की उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, जागना चाहते ही नहीं है, सोए रहना चाहते हैं। क्योंकि जब अंधेरों के अंदर रह रह के कोई अंधेरे का आदी हो जाए ना, उसको जगाना बड़ा ही मुश्किल होता है, जो आदी हो जाते हैं। जब इंसान, देखिए आप खुद सोचें, कोई एक बंदा बड़ी देर से सोया हुआ है, एकदम आप लाइट जला दें तो उसकी आंखों पे बोझ होता है वो तो, क्योंकि वो अंधेरों में ही रहता है। वो जो लोग अंधेरों के अंदर इतने अरसे से रह रहे हों, अब उनको अच्छा नहीं लगता आप कुरान की रोशनी जलाएं, तो ये लाइट उनको पसंद नहीं आती, वो कहते बंद करो इसको, क्योंकि अंधेरों के आदी हो गए हैं, वो मानूस नहीं है रोशनी से। अल्लाहु अकबर। ये लोग, उनका तो हाल ये बताया जा रहा है कि उनके पास तो अरसे दराज से कोई बताने वाला नहीं आया था, तो वो गाफिल पड़े हुए हैं। आप इनकी गफलत की नींद से इनको जगाइए। उनकी गफलतें क्या थी? कुफर, जहालत, बुत परस्ती, शिर्क, फिर अपनी रसूमात, फिर ये सब अंधेरे थे जिनके अंदर थे वो, तो वो उनके अंदर पड़े हुए थे। अब ए नबी, आपका काम है कि आप इनको इस कुरान के जरिए तन्बीह करें, और जाहिर है अब वो इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं, आगे बात आ रही है कि अक्सर लोग इनमें से उनके क्या रवैये होंगे। अब हम उनकी तो बात करते हैं, ठीक है, उनकी एक बात है कि वो बड़े अरसे से, उन तक जाहिर है कोई नबी नहीं आया था, उनको कोई बताने वाला नहीं आया था, तो वो गफलतों में पड़े थे। हमारे पास तो कुरान है, हमारे घरों में है, हमारे इर्द गिर्द कुरान की कितनी दफा बात होती है। हम कोई कोई फोन खोलते हैं, उसमें कोई कुरान की आयत कोई भेज देता है, हम कोई और किसी मीडिया में कोई और चीज कोई पढ़ लेते हैं, हम कोई टीवी लगाते हैं उसमें कुरान। लेकिन यूं लगता है कि हम इतने अंधेरों के आदी हो गए कि जहां कुरान की आयत देखी तो उसको आगे कर दिया और दूसरा कुछ और देखने लग गए। कोई चैनल के ऊपर अगर कुरान आ रहा है तो उसको बदल दिया, कहीं और चले गए। किसी जगह कोई कुरान की बात हो रही है तो हम इतनी लेट गए कि बिल्कुल ही, ताकि सब खत्म हो चुका हो और हमें कुछ सुनना ना पड़े, बस हमारे कानों में ना कोई बात टकरा जाए, जब खाने और पीने का टाइम होगा तब चले जाएंगे। ये क्या बोर बातें हैं, ये क्या डरा देने वाली बातें करते हैं, तो हमने ये नहीं सुननी है। देखें, याद रखिएगा एक मेरी बात,
इंतजार है ही बुरे अंजाम से डराना लोगों को कि देखो लोगों उठ जाओ, कोई आपको कहे कि आगे आग है, गड़ा है आग का, उस तरफ ना जाओ, तो ये आप कहेंगे मुझे डरा रहा है? उसने तो आपको बचाने के लिए एक आपकी खैर खोई की कि आपको बता दिया कि इस रास्ते पर ना जाना। वो ही लोग कहते हैं डराने वाली बातें जो डीप स्लीप से उठना नहीं चाहते। याद रखें, हम सोए रहना चाहते हैं क्योंकि हम उन मजों के इतने आदि हो गए, हम कहते हैं हमारे मजे ना कहीं हमसे छूट जाए, ये मजे हैं, ये फन है, ये वो है, हाय 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 दीन की तरफ आ गए तुम्हारे तो ये सारे मजे छूट जाएंगे। वो तो कुरान कहेगा ये नहीं करना, तो मैं कैसे ये छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैंने आना ही नहीं है, आऊंगी तो फिर ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो हमसे नहीं हो छोड़ा जाता। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी खैर ख्वाही है अल्लाह ताला की इंसान से कि उसने, वो जो रब है रहीम, उसकी इतनी बड़ी रहमत है कि इससे ज्यादा क्या रहमत होगी उसकी कि वो रब्बे कायनात है और उसने एक जर्रे से कलाम किया, एक इंसान से कलाम किया और उस इंसान की फिक्र की कि इसको इंतजार करो कि ये बुरे अंजाम से बच जाए, ये वो काम ना करे कि जो उसको जहन्नुम के गड़े तक पहुंचा दे, इनको बता दो, इनको जगा दो, ये किधर हैं गुम, इनको उठाओ है नबी। उसके लिए अल्लाह ताला ने एक नबी को भेज दिया, अपने प्यारे को भेज दिया, जिन्होंने पत्थर भी खाए ताइफ के तब भी उफ नहीं किया, जिन्होंने 23 साल सबर किया, चलते रहे, किस लिए जागे लोग कहीं जहन्नुम तक ना पहुंचे, उनकी सारी मेहनत, सारी काविश, सारे जख्म किसके लिए खाए थे उन्होंने, इसलिए कि लोगों बच जाओ जहन्नुम से। सोचे अल्लाह ताला की कितनी खैर ख्वाही है इंसान के लिए, इतना इतमाम किया उसने। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से एक दिन निकल गया अल्लाह अकबर, ओहद में ये सब जख्म खा के मुंह से जब निकल गया कि ये कौम कैसे हिदायत पाएगी जो अपने नबी के साथ ऐसा करती है, तो अल्लाह ताला ने फौरन फरमाया कि नहीं नबी, आप नहीं ये कह सकते, हिदायत देना हमारा काम, आप ये बात ना कहें। अल्लाह अकबर, उस रब को इस इंसान की कितनी ज्यादा इससे मोहब्बत है और कितना इसका ख्याल है और कितनी इसकी तरफ तवज्जो है कि अल्लाह ताला ने कितना एक, यानी पूरा एक निजाम इसके लिए, पूरा एक पूरी कितना इत्तमाम इसके लिए किया कि अपना कलाम भी उतार रहे अपने ऐसे प्यारे नबी को जो रहमतुल्लिल आलमीन कहलाए गए, उनको भेजा दुनिया में जो जिनके अंदर इंसानियत का इतना दर्द था। ये अल्लाह ताला को खुद तसल्लियां देनी पड़ रही हैं कि नबी आप अपने आप को मत हलकान करें, क्यों हलकान करते हैं, इन्होंने नहीं मानना, आगे आ रही है आयात। उसके बाद इंसान का ना, मुझे तो अल्लाह ताला चाहे ही तो मुझे रास्ते पर ले आए, मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी आना चाहती हूँ, बस आप दुआ करें, यानी वो अल्लाह ही नहीं लाना चाहता मुझे, मैं तो तैयार बैठी हूँ। आगे हम पढ़ेंगे कि कितनी हमारी तलब है तो तभी अल्लाह ताला भी रास्ते पर लाता है ना, तो गफलत है, गफलत आज हर तरफ गफलत है, यानी काफिर तो गाफिल है ही है, हमने जिन्होंने जगाने का काम करना था हम तो खुद ही गाफिल हो गए, हमें क्या हो गया है। जुनेद बगदादी का एक बात आती है कि गुनाहों की जड़ जो है ना वो गफलत है, यानी इंसान जब अल्लाह को भूल जाता है तो फिर वो गुनाह ही गुनाह है, फिर गुनाहों की जिंदगी है, इंसान गाफिल हो जाए अल्लाह की तरफ से, उसको भूल ही जाए मैं आया किधर से हूं तो मैंने जाना कहां है। आज कितने मुसलमानों को ये फिक्र है कि हर मेरा अगला बढ़ता हुआ कदम, हर मेरी आने वाली सांस, हर दिन और हर रात जो गुजर रही है मुझे मेरी मौत की तरफ लेकर जा रही है, मुझे कब्र के गड़े की तरफ लेकर जा रही है, कोई मैं जवानी की तरफ नहीं जा रही, कोई मैं और ज्यादा ताकत की तरफ नहीं जा रही, हर दिन मुझे कमजोर कर रहा है, हर दिन मुझे बुढ़ापे की तरफ लेकर जा रहा है। वो दिन हम सब के गुजर गए जिसमें हम बचपन में थे और अभी हम ऊपर को जा रहे थे, हम डाउन द हिल हैं, मगर फिक्र है किसी को नहीं, हमें ज्यादा फिक्र इसकी है कि मैं और जवान नजर आऊं, हमें ज्यादा फिक्र इसकी है कि मुझे मेरी एज और छोटी नजर आए, उससे कुछ नहीं होगा। जितनी लिखवा के लाए हो उतनी सांसें ही आनी है, बढ़ा नहीं सकते। क्यों गाफिल हो अपने अंजाम से? क्या उस बड़े दिन से नहीं डरते जो आगे आने वाला? हम किधर फंसे हुए हैं, किन चीजों में हम लगे हुए हैं? हम अपनी एक्टिविटीज देखें, हमारी एक्टिविटीज क्या है? हमारे शबो रोज किस में गुजर रहे हैं? हमें होश नहीं आता, हमें ख्याल नहीं है। ये जिंदगी एक दफा गुजर गई, वापस ना मिलेगी, ये वक्त वापस नहीं आएगा। तब एक नेकी भी करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे, क्यों नहीं होश में आते? उनको क्या कहें जिनके पास तो नबी नहीं आए थे इतने अरसे थे तो वो गाफिल थे। हमारे पास तो कुरान भी है, हदीस भी है, पढ़ाने वाले भी हैं, सिखाने वाले भी हैं, तब भी हम गाफिल हैं, तब भी गाफिल हैं। ये क्या एक्सक्यूज देंगे हम अल्लाह के सामने कि हम तब भी क्यों गाफिल रहे? क्या चीज नहीं है आज हमारे पास? वो कलाम जिसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज एज इट इज है, वो कलाम हमारे पास है जो दुनिया के किसी और कौम के पास, किसी और मजहब के पास नहीं है। ऐसा कलाम जिसमें हर हर्फ, हर लफ्ज, हर नुक्ता एज इट इज हो, इतना बड़ा ट्रेजर है हमारे पास। फिर हम क्या अल्लाह को जवाब देंगे, हम क्यों गाफिल रहे, हमने क्या किया? अब दो तरह के लोग हैं। अल्लाह ताला ने तो अपना कलाम उतार दिया, उसका मकसद ये था, लेकिन कुछ लोग होंगे तब भी नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। अच्छा, एक और बात आपको, आगे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि माँ का एक और मतलब भी है। माँ नाफिया तो मैंने आपको बता दिया नफी से, कि नहीं, खबरदार ये कि एक माँ मसदरिया भी यहाँ पे हो सकता है इसका माना, कि ए नबी आप उन लोगों को इंतजार कर दें कि माँ उनजीरा जो खबरदार किए गए उनके आबाओ इजदाद, कि उनके आबाओ इजदाद को भी खबरदार किया गया था, उनको भी डर सुनाया गया था, इसी तरह इनको भी सुनाए आप, इनके बड़ों को भी डराया गया था। यानी बहुत पहले जमाने में इस्माइल अलैहिस्सलाम तो आए ही थे, तो और ये गाफिल हैं क्या? और कौमन से यहाँ पे कोई ये ना समझ लें कि सिर्फ उन कौम की तरफ आए और उसके बाद किसी और ने, वो मारसलना का काफतन लिन्नास, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया है कि ए नबी हमने आपको भेजा सारी इंसानियत के लिए, सब लोगों के लिए भेजा, मगर ये चूंकि जिस टाइम पे ये आयात आ रही थी, उतर रही थी, आपको जैसे बताया कि उस वक्त खास सिर्फ कुरैश मक्का के लिए उस वक्त दावा था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर आगे हुआ। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आगे दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो कह दे मैं ना मानूं, मैंने मानना ही नहीं है, आप मुझे बताएं उसका आप क्या कर सकते हैं। कोई बंदा कह दे भाई सूरज, इस वक्त दिन का टाइम है, सूरज चमक रहा है, दूसरा कहे नहीं जी रात है ये, अब आप उसको कितना मर्जी कन्विंस करें, जिसने ठान ली है कि बस रात ही है, आप नहीं उसको मनवा सकते। इसी तरह के ये लोग हैं, इनको जितना भी बता दें नबी आप, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन होते थे ना, ये क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे, इनको क्यों नहीं ये बात पल्ले पड़ रही। तो अब देखिए ऐसे होता है ना, आप एक जगह लेक्चर देने जाते हैं, आप वहां पे 10 तरह के लोग होते हैं, बाज लोग तो इतने गौर से बात को सुनते हैं कि ऐसे लगता है आंख झपकना भी भूल गए, और दूसरे बाज लोग ऐसे होते हैं उनका टाइम ही नहीं पास हो रहा होता, वो इधर से उधर, उधर से इधर देख रहे हैं, अब कैसे वक्त पास हो, कब ये खत्म हो तो हमारी जान छूटे। तो हर तरह के लोग होते हैं ना, कलाम एक ही है, ये कुरान तो एक है, इसका मी बरसेगा, जमीनें अलग अलग होती हैं, मी वही होता है, बारिश वही होती है, ऐसे नहीं होता कि बाग पे अलग बारिश बरस रही है तो सहरा में अलग बरस रही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जरखेज जमीन पे अलग बरसी तो बंजर पे अलग बरसी, बारिश एक है। ये दिलों का फर्क होता है, दिल कोई ऐसा होता है जो जरखेज है, उसमें फूल फल होते हैं, कई बंजर दिल होते हैं, कई पत्थर दिल होते हैं, जहां भी देखें पत्थर होते हैं उसके ऊपर बारिश भी बरसती रहती है, उसके ऊपर कभी पौधे नहीं उगेंगे, सख्ती है ना अंदर। यही हाल कुछ ऐसे लोगों का, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم، اے نبی حق ہو گئی، البتہ تحقیق پہلے آیا، لام تاکید اور قد، قد بھی تاکید کے لیے، جیسے ایک بات کنفرم ہو گئی بھی ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، بات ثابت ہو گئی ہے یقیناً یا انڈیڈ شورلی، جو بھی آپ نے لفظ لانے ہیں، لقد وہ سارے معنی اس کے اندر آ گئے، حق ہو گئی ہے بات، کون سی بات، کون سی بات حق ہو گئی، ثابت کون سی بات ہو گئی. دیکھیں تھوڑا پیچھے کا سوچیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اور ابلیس نے ان کا سجدہ کرنے کا انکار کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے مطلب دھتکار دیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں اس کو بہکاؤں گا، میں ان کو جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا اور یہ اکثریت میرے پیچھے چل پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو تیرے پیچھے جائیں گے تو پھر ان کا بھی ٹھکانہ وہی ہے جو تیرا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے. تو ان کے اوپر وہ والی بات حق ہو گئی، یعنی کیا؟ عذاب کے فیصلے کی بات، کہ لوگ ہوں گے جو شیطان کے پیچھے چلیں گے. اللہ کا فیصلہ تھا نا عذاب کا، کہ ایسے لوگوں کو میں پھر عذاب ہی دوں گا. تو ان کے اوپر وہ والی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ حق ہو چکی ہے، انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. کنہوں نے؟ اللہ اکثرہم، ان میں سے اکثریت نے. فہم لا یومنون، ہے نبی آپ کچھ کوشش کر لیں، کتنی بھی کر لیں، دن رات ایک کر دیں، انہوں نے نہیں مان کے دینا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں مانیں گے، تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کے بعد تو آپ سے بہتر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، آپ سے بہتر اخلاق، آپ سے بہتر کردار، آپ سے بہتر تبلیغ کسی کو بھی نہیں آ سکتی. لیکن بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ ان کی بات میں کوئی کمی تھی، ان کے طریقے میں کوئی کمی تھی، یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملنی ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، پتھر کے اوپر تو پھول نہیں کھلتے کبھی بھی، پھول کھلنے کے لیے زرخیز زمین چاہیے، نرم زمین چاہیے. جن کے دل ایسے پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ وہاں وہ خیر اگ ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر، تو یہ کبھی نہیں ایمان لے کر آئیں گے، یہ کبھی نہیں ہدایت کی طرف آئیں گے. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے، کیا انسان کی طلب ہوتی ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ آتا ہے، یا پھر اللہ اس کو لے کر آتا ہے تو وہ آتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نا، اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے. یعنی پہلا قدم کون اٹھاتا ہے؟ بندہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے تھام لیتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کو پتہ ہے اس بندے کے دل میں کتنی طلب ہے، کتنی تڑپ ہے، اس کے مطابق ہی ہدایت دیتا ہے. سورہ انعام میں آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر جانتا نا، تو خیر ان لوگوں کے کو ضرور پہنچتی. یعنی اگر ان کے اندر خیر ہوتی نا، یعنی بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہاں یہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں اللہ نے ہی نہیں دی تو ہم کیا کریں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر واقعی آپ کے اندر تڑپ ہوتی نا، اگر طلب ہوتی، اگر آپ کے اپنے اندر خیر ہوتی، اللہ ضرور لے کر آتا. وہیں کوئی کمی ہے، تب دیکھنا چاہیے کہ کمی میرے اندر کہاں پہ ہے. تمہارے اندر تڑپ نہیں ہے اتنی جتنی کہ ضرورت ہے، صرف باتیں ہیں. تو جس چیز کو بھی یہ شکایت ہے، ہائے مجھے نہیں مل رہی ہدایت، پتہ نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو وہ بلیم کرے، اللہ کو نہ بلیم کرے، اس لیے کہ طلب میں کمی اپنے اندر ہے، آپ کے اندر وہ چاہت نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لگتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ نہیں چاہتے تھے، یہ آتے ہی نہیں تھے اس طرف، یہ نہیں مان رہے تھے. ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی اب انہوں نے جانا ہی جہنم میں. انہوں نے اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ بہت سے لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ڈال دیا، ان کے اوپر تو بات ہی ثابت ہو گئی، اب ان کا کیا قصور تھا؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا، قصور یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر کمی ہوتی ہے، اپنے اندر پرابلم ہوتا ہے. اللہ نے کسی کو زبردستی جہنم میں نہیں ڈالنا، اللہ کسی کو پکڑ کے نہیں لے جاتا کہ یہ چلو جہنم کی طرف. اگر اللہ نے کسی کو نعوذ باللہ پکڑ کے لے جانا ہوتا جہنم کی طرف اور لوگوں کو ڈالنا ہی ہوتا جہنم میں اور اپنی یہ بات پوری کرنے کے لیے ان کو وہاں تک پہنچانا ہی ہوتا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر کیوں بھیجے پیغمبر, کیوں اتارا قرآن, کیوں ہدایت کی اتنی باتیں کی, کیوں کبھی جنت کبھی جہنم, کبھی ان کو خوشخبریاں دیں کبھی ان کو ڈراوے دیے, کس کس طرح نہیں سمجھایا بتائیں, کبھی پچھلوں کی سٹوریز بتا کے, کبھی کائنات کی نشانیاں دکھا کے. دیکھو کائنات میں ہی غور و فکر کر لو, تم دیکھو تو صحیح جو تمہاری ارد گرد چیزیں, ان پہ ہی غور و فکر کر لو, سوچو تو صحیح کوئی ہے نا بنانے والا. اچھا تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی, وہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں تمہارے پاس آئی ہوں گی, ان کے راستوں سے ہی تم گزرتے ہو, کبھی ان کے اوپر ہی غور کر لو, کس نے ان کو ختم کر دیا, کیوں ان کا یہ انجام ہوا. تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی, نبی کی بات سن لو, یہ تمہارے اندر رہتا تھا 40 سال تمہارے اندر رہا, تم خود ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے, ان کی بات سن لو. کہاں کہاں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کے لیے مواقع دیے, اور اللہ ضرور چانس دیتا ہے. یاد رکھے انسان کو مت کہیں کہ نہیں جی مجھے نہیں کبھی کوئی چانس ملا, اللہ ضرور چانس دیتا ہے. یہ بھی چانس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو انوائٹ کرے کسی مجلس کے اندر جہاں پہ کوئی اللہ کی بات ہو, وہ بتانے والے کی بات نہیں ہوتی. یاد رکھیں اللہ کا انویٹیشن آپ کو ہوتا ہے, یہ حجت ہو جاتی ہے آپ کے اوپر کہ قیامت کے دن کہا جائے گا فلاں مجلس میں تم گئے تھے نا, وہاں پہ اللہ کے دین کی دعوت دی گئی, قرآن کی دعوت دی گئی, اس کے بعد تم نے کیا کیا. وہ دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, فرشتے تو اتر کے آئیں گے نہیں یہ مجھے اور آپ کو کارڈ دیں اور ہمیں بلائیں کہ آ جاؤ اللہ کی طرف. اسی طرح اللہ کے کوئی بندے کسی کو کہیں پہ اللہ تعالیٰ بات سنوا دے گا کسی کے ذریعے, کہیں کوئی قرآن کی آیت سنوا دے گا, کہیں پہ کوئی آیت لگی ہوگی, کہیں پہ کسی کا لیکچر آپ کے کانوں میں پڑ جائے گا, کہیں پہ آپ کے فون میں کوئی میسج بھیج دے گا, یہ سارے انویٹیشنز ہیں. اس طرح سے اللہ بلاتا ہے ہمیں, وہ طرح طرح سے بلاتا ہے. کہیں ہم نے ٹی وی آن کیا کسی دن کوئی بات وہاں پہ آ رہی تھی کوئی ایسی, اس وقت ہم جاگتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں اللہ نے مجھے یہ کیوں سنوائی, کیوں سنوائی مجھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے بلا رہا ہے, یا ہم سر جھٹک کے اگنور کر کے اگلا میسج پڑھنے لگتے ہیں یا اگلا چینل سن لیتے ہیں یا وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہاں ہوں گی وہ باتیں, وہ تو قریش مکہ کی باتیں ہو رہی تھیں, آج ہم نے یہ یہ باتیں سنی ہیں. یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے, اس کا انذار اس وقت تک ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے امتی یہ فریضہ انجام دیں گے, کچھ لوگوں کو بلائیں گے, کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک تک, اللہ کی اللہ نے تو حجت تمام کرنی ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر ایک تک میسج پہنچاتا ہے. اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ دل کے دروازے کھولتا ہے یا بند کیے رکھتا ہے. قرآن نوک کرتا ہے دل کے دروازے پر, قرآن کھڑا انتظار میں کہ آپ دروازہ کھولیں, آپ کھولے ہی نہیں تو قصور کس کا ہے پھر. ہاں اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا, زبردستی کسی کے گھر کے اندر قرآن نہیں گھس جائے گا. اللہ کہتا ہے یہ تو اتنی قیمتی چیز ہے, مجھ سے مانگا کرو, یہ اہدنا الصراط المستقیم, یہ راستہ مجھ سے مانگو جو قرآن کا راستہ ہے, میں چلاؤں گا تمہیں اس راستے پر. تم طلب تو کرو, تم شوق تو رکھو, تم مانگو تو صحیح. ان کے اندر طلب نہیں تھی, ان کے اندر یہ نہیں تھا یہ نہیں مانیں گے, ان کے اوپر حق بات حق ہو گئی ہے, ثابت ہو گئی ہے, یہ اب نہیں بچیں گے. ہم یعنی انہوں نے اپنی ڈیسٹنی خود مقرر کر لیا کہ بس ہم نے جانا ہی. آپ کی دیکھنا, آپ کسی کو بتاتے بھی رہے بھائی جی آگے آگ ہے آپ نہیں جائیں, آپ کو نہیں پتا آگے بڑا خطرہ ہے, وہ کہتا نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے, میں نے جانا ہی جانا ہے, وہ جان چھڑا چھڑا کے آپ سے جا رہا ہے, تو اب آپ کیسے اس کو روک سکتے. تو اب اس نے خود ہی اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیا کہ میں نے ادھر گرنا ہی ہے, تو کون اس کو بچا سکتا ہے پھر. تو ان کے اوپر بات حق ہو چکی, یہ اب نہیں بچیں گے, یہ ٹھیک ہے جہنم کے راستے پر ہی جانا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے اس کال کی طرف اشارہ ہے جو 7 دفعہ قرآن میں ابلیس اور انسان کے جو بات آئی ہے نا, جو سارا قصہ ہے, تو اس کے اندر یہ بات ہے ساری.
ये वाकई हो चुका है कॉल, उसका दाव चल चुका है इनके ऊपर, ये उसके फरेब में है। अब ना ये निकलना चाहते हैं, ना अपनी अकल इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब इनको जगाते रहो, ये जागना ही नहीं चाहते, तो अब क्या हो सकता है? गफलत के पर्दे इतने मोटे मोटे पड़ चुके हैं आंखों पे कि उठना ही नहीं चाहते। और कितने हैं ये लोग, अक्सरियत, अक्सरियत। आप सोचें तो पिछले जो इतने पैगंबर आए उनके ऊपर अक्सरियत ईमान नहीं लेकर आई, अक्सरियत। वो कम लोग होते थे जो ईमान लाते थे। अब तो फिर इसके बाद अगर नहीं इन्होंने ईमान लेकर आना तो फिर क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दावा करना चाहिए, तबलीग नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस चीज से नहीं रोका, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि नबी आपने इनको नहीं बताना क्योंकि इन्होंने तो ईमान लाना ही नहीं, तो फायदा क्या इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने का, छोड़े इनको, ऐसे नहीं फरमाया। ये तसल्ली दी है कि आप इस वजह से गमगीन ना हो, इन्होंने अब ये फैसला कर लिया कि अब इन्होंने जहन्नुम की तरफ ही जाना है तो ठीक है, तो क्यों नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया? इसलिए कि कयामत के दिन ये तबलीग, ये दावत इन लोगों के खिलाफ हुज्जत बन जाएगी। ये नहीं कह सकेंगे हाँ हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, बताया गया तुम्हें, बताया गया तुम्हें, और बार बार बताया गया, तुम नहीं माने। अब ये देख लेना, ये जो मैंने जैसे आपको कहा है कि हमें भी बुलाया जाता है, बुलाया जाता है, जितनी दफा बुलाया जाता है और हम उठ के इधर चले जाते हैं, भूल जाते हैं, सुनते ही नहीं है और कान बंद कर लेते हैं, या एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ये हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगा क्यामत के दिन, अगर वाकई हमने इन बातों से फायदा ना उठाया, हमने इस इन्विटेशन को समझा ही ना। तो ये क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन कहेंगे कि मैंने तुम्हें बुलाया था फलां मौके पे, फलां जगह पे, फलां चीज से, तो अल्लाह ताला चांसेस देते हैं